हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण लेक्चर 9। परम सौभाग्य है कि हम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु सर्वभूम भट्टाचार्य को वेदों के अंदर जो भगवान के निराकार अस्तित्व के विषय में बताया गया है, उसके लिए बताया कि ये सब क्यों बताया गया वेदों में, ताकि भगवान के लौकिक धारणा का निराकरण करने के लिए, कि भगवान जो है वो लौकिक नहीं है, दिव्य है। उसके विषय में भगवान की तीन स्थितियां, भगवान के परम सत्य के तीन फेस कौन कौन से हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में बताया। लेकिन भगवान जो है वो भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त हमने भगवान की तीन मुख्य शक्तियों के विषय में, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और तटस्थ प्रकृति के विषय में पढ़ा। उसके बाद परा प्रकृति भगवान की तीन विभिन्न चरणों में प्रकट होती है, संयत, संदनी और अलादनी, यानी सच्चित आनंद भगवान के जो स्वरूप है उसके विषय में हमने पढ़ा। और हमने समझा कि भगवान का दिव्य स्वरूप शाश्वत अस्तित्व तथा दिव्य आनंद से पूर्ण है, और ये ऐसा आनंदमय पूर्ण जो रूप है वह भौतिक सत्वगुण से उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता है वह श्रद्धाविहीन, असुर, अस्पर्श्य, मनहूस तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। ये चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हमने यहाँ तक पढ़ा। हम आज उससे आगे जाएंगे और यह आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथन् वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वञ्चाकल्पतरूभयस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदी गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उनको नास्तिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वेद को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि लोग वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, यानी कि वेदों में जो कहा गया है भगवान के विषय में, भगवान के साकार स्वरूप के विषय में, उसको स्वीकार नहीं करते। वे निश्चित रूप से बौद्धों से अधिक घातक है बौद्ध, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम नहीं मान रहे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो मानते कि हम वेदों को मान रहे हैं और वेदों की आड़ में लेकर भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हैं, तो वो ज्यादा घातक हैं। और ऐसे लोगों को भगवान ने यहाँ पर बताया कि ऐसे लोगों को हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो यमराज के द्वारा दंडनीय है और यदि हम उनका संग करेंगे तो हमें भी यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला वेद व्यास जी ने अपने वेदांत सूत्र में कृपा करके वैदिक ज्ञान संकलित किया। लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय यानी शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पद से भ्रष्ट हो जाएगा। तो यानी कि मायावादी भाष्य सुनिले हुए सर्वनाश। यदि हम मायावादी ऐसे जो भाष्यकार हैं उनकी व्याख्याएं सुनेंगे तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि भगवान से जो हमारा प्रेम निर्माण करने का जो रियल वास्तविक हमारा आध्यात्मिक में कदम रखने का एक ही कारण है कि हम भगवान से अपने संबंध को जिसको भूल चुके हैं जन्म जन्मांतर से, उसी के कारण हम दुख भोग रहे हैं इस संसार में। कष्ट उठाने का एकमात्र यही कारण है क्योंकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए और भौतिक संसार, इस जो भौतिक चीजें हैं उनकी तरफ हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा हो गया, और यही आकर्षण भौतिक सृष्टि से हटाकर, माया से हटाकर मायापति के श्री चरणों में निर्माण करना, यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और हम क्योंकि अगर हम किसी मायावादी की भाषा सुनेंगे तो फिर हम उसको निर्माण नहीं कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पर कहते तो वो अपने आत्म साक्षात्कार के पर। आत्म साक्षात्कार क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो स्वामी है और दास का कर्तव्य केवल अपने स्वामी को संतुष्ट करना है। आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि सृष्टि उत्पत्ति तथा सिद्धांत का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत हुआ है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति सिद्धांत पर लागू होता है। कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे कि पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, यानी कि जितनी भी मात्रा में, जितनी भी क्वांटिटी में हमारे पास सोना होगा तो उसको, अगर पारस होगा हमारे पास तो उसको सोना बना देगा। लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर ही बना रहेगा। उस ऐसा नहीं है कि वो सोना बनाते बनाते खुद थोड़ा सा लोहे में परिवर्तित हो जाएगा या उसकी पारस्यता जो है वो कम होती जाएगी, वो एज इट इज बना रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सारे दृष्टि जगत को उत्पन्न कर सकता है, तो भी वह पूर्ण तथा परिवर्तित हुए बिना, अपरिवर्तित बिना बना रहता है। यानी कि भगवान भले संसार में कितनी भी शक्तियों के द्वारा कितने भी रूपों में यहाँ पर विस्तृत हो जाए, परमात्मा के रूप में या आत्मा के कितने भी यहाँ पर भगवान के भिन्नांश प्रकट हो जाए, भगवान की कितनी शक्तियां हों, भले पराशक्ति या पराशक्ति और तटस्थ शक्ति, जो भी भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कार्यकलाप करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे भगवान के भगवत्व में कोई कमी आ जाती है, वो पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उससे जो निकलता है वो भी पूर्ण है और जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। भगवान की पूर्णता में कभी भी कोई कमी नहीं आती है, वो सदैव पूर्ण बने रहते हैं। जैसे पारस के जरिए से जितना भी सोना बनाया जाए, लेकिन फिर भी पारस तो पारस ही बना रहता है। आगे श्री पापा जी कह रहे हैं कि मायावादी संप्रदाय में मिथ्या के सिद्धांत को इस आधार पर समर्थन प्राप्त है कि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार ला देगा। यदि ऐसा है तो व्यास देव असत्य है। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक मिथ्या यानी माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला, लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है जैसा कि मायावादी मानते हैं, लेकिन इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। कोई स्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं हो सकती। अस्थायी वस्तु तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठी हो, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है सर्वथा असत्य है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही मायावादियों का एक दृढ़ सिद्धांत है कि संसार पूरी मिथ्या है, उसके विषय में बता रहे कि वो क्या कहते हैं कि संसार पूरी मिथ्या है, लेकिन वास्तव में संसार मिथ्या नहीं है, ये सिर्फ क्या है, अस्थायी है, ये इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जो इसमें अब ये अगर मिथ्या होता तो फिर हम इसमें जो कर्म कर रहे हैं वो तो सब ऐसे जैसे मिथ्या, सपने में कैसे हम कर्म करते हैं उसका हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता, तो अगर ये मिथ्या है तो फिर हमें ऐसा ही होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए किसी का भी रिजल्ट। लेकिन इस जगत में रहकर हम जो कार्य करते हैं उसका रिजल्ट तो हमें मिलता है, तो इसका मतलब ये संसार मिथ्या नहीं है, अशाश्वत है। तो ये वो लोग क्या कहते हैं, ये संसार मिथ्या है, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है सर्वथा, और वो क्या कहते हैं, हम आत्मा हैं तो हम ही सब हैं या इस तरह, तो फिर बोला ये तो बिल्कुल असत्य है। वेदों में प्रणव ओम अथवा ओमकार मूल आदि मंत्र हैं। यह दिव्य शब्द भगवान का स्वरूप ही है। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओमकार पर आधारित हैं। तत्त्वमसी तो वैदिक साहित्य में एक तटस्थ शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओंकार की बजाय तटस्थ शब्द तत्त्वमसी पर अधिक बल दिया। अब शंकराचार्य के संप्रदाय में क्या होता है, ओम का क्या मतलब होता है, ये जो दिव्य शब्द है ना ओंकार, वो भगवान के दिव्य स्वरूप का निर्देशन करता है कि ये भगवान ओम, ये प्रवण ओंकार जो है वो सारे मंत्र जो है उसी पर टिके हुए हैं और ये आधारित इस पर आधारित है। लेकिन जो शंकराचार्य जी की व्याख्या है ना, उसमें ओम को सेकंड स्टेज दिया गया और सबसे पहले उसको किस पे, अब जो दूसरा शब्द है ना तत्वमसी, तत्वमसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। हालांकि तत्वमसी जो है वो सेकंड नंबर यानी तटस्थ शब्द है, लेकिन बीज मंत्र मूल मंत्र क्या है, ओम है। अब संस्कृत शब्द जो है वो चिकनी मिट्टी की तरह है, जैसे भी उसको हम मोड़ते हैं वैसे मोड़ जाता। तत्वमसी का मतलब होता है असी, मैं जो हूँ वो उसी का दास हूँ। लेकिन शंकराचार्य के जो है ना ट्रांसलेशन उनके हिसाब से क्या है, तत्त्वमसि मैं वही हूँ, यानी जो वो है वो मैं वही हूँ, मैं भी वही हूँ वो भी वही है, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये उन्होंने जो बताया कि आत्मा सु परमात्मा, यानी जो आत्मा है वही परमात्मा, उसके विषय में यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग डेफिनेशन है। मैं भगवान का दास हो सकता, मैं भगवान कभी नहीं हो सकता। इसी तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारकों का खंडन किया। और चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना वेदांत जो भी सूत्र पर अपना जो प्रवचन किया तो मायावादियों के ये सारे जो भी तर्क दे रहे थे ना कि भगवान में और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, दास दास दासानुदास, हम तो गोपी भर्ता पद कमल, जो भगवान गोपियों के भगवान है, गोपियों के नाथ है, उनके चरणों के दासों के दासों के दास हैं हम, वो भगवान के समान कभी नहीं हो सकते। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाकचाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान के शाश्वत स्वरूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति ही हमारा शाश्वत तर्क है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने जो भट्टाचार्य के साथ जो उनका चल रहा था ना वाक बातचीत चल रही थी वेदों के विषय में, उनके विषय में बताया कि भले भट्टाचार्य ने बहुत बहुत कोशिश की कि वो अपने मायावादी जो इनका निर्णय है उसके हिसाब से चैतन्य महाप्रभु को बताया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के तर्क इतने कुशल थे। अब जाहिर सी बात है चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें हरा दिया और उन्हें बताया कि वास्तव में हमारा क्या कर्तव्य है, शाश्वत रूप से हमारा भगवान के साथ संबंध है और भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य केवल भगवान के साथ अपने प्रेम को डेवलप करना है, भगवान के साथ अपने जो प्रेम का व्यवहार है उसको निर्माण करने का ही हमारा कर्तव्य है। और भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर क्या होगा, बाकी जितने भी जीव हैं उनके साथ तो हमारा प्रेम उत्पन्न होना ही, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ममैव अंशजीव लोके। अब भगवान के साथ अगर हमारा प्रेम है तो भगवान से रिलेटेड हर एक चीज से हमारी सहानुभूति, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो बाकी किसी से नफरत करेंगे। वास्तव में क्या है भक्तों, जब भगवान के साथ हृदय में प्रेम निर्माण हो जाता है ना, फिर हमारे हृदय में इतनी जगह रहती नहीं है कि हम किसी और से नफरत कर सके, क्योंकि वो प्रेम इतना ज्यादा होता है कि हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम हो जाता है, द्वेष नफरत ये सब रहता ही नहीं है। ईर्ष्या दूसरों से करना, दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचना, क्योंकि ऐसा लगता है सर्व जो भी संसार है वो कृष्ण में ही लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है जो गलत कर रहा है वो कृष्ण जो है ना वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे साथ ना हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वो सब कुछ भी गलत नहीं लगता। वास्तव में जब कृष्ण प्रेम का निर्माण रह जाता है ना तो हृदय में कोई गंदगी नहीं रहती है, कोई हृदय के अंदर कोई अनर्थ नहीं रहते, कोई भी अपवित्रता नहीं रह जाती। महाप्रभु ने कहा कि तीन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वेदों के विषय में बता रहे हैं कि तीन बातें इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। और वो क्या है, ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, के मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ और शाश्वत दास हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध है। अब वो संबंध अब देखो हमारे पास दूसरे भी भगवान के साथ संबंध है ना, सख्य माधुर्य वात्सल्य, लेकिन वास्तव में क्या है, कोई भी प्रेम किसी भी रिश्ते पर अगर आधारित हो ना तो प्रेम का प्रशिक्षण कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी दास से। देखो अगर माँ का बच्चे के साथ वात्सल्य प्रेम है तो कैसे पता चलेगा बस माँ हूँ इसलिए, नहीं। वात्सल्य प्रेम में क्या करेगी माँ, बच्चे की सेवा करेगी है ना, उसको खिलाएगी पिलाएगी लाड़ लड़ाएगी, प्रेम कर रही है। और वात्सल्य भाव से सेवा करना, अब किसी के साथ अगर हमारा सखा भाव है तो सखा मतलब फ्रेंडशिप है हमारी, लेकिन प्रेम को प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसको उसको प्रूव कैसे कैसे करेंगे कि हम उसके साथ उसकी जो भी है ना प्रॉब्लम्स में हम उसकी सहायता करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी एक तरह से दोस्त दोस्त की सेवा करते हैं। अब माधुर्य प्रेम में पति पत्नी होते हैं या फिर प्रेमी प्रेमिका, वो एक दूसरे की कष्ट नहीं देख सकते और एक दूसरे को खुश करने के लिए सदैव एक दूसरे की सेवा करते। पति मतलब जो प्रियतमा प्रेमी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और प्रेमी प्रियतमा की सेवा। तो वास्तव में भले आप भगवान के साथ कोई भी संबंध निर्माण कर लो, लेकिन वास्तविक संबंध क्या हो जाता है, दास का संबंध, कि मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकूं। अब आप भगवान के साथ कोई भी संबंध निर्माण कर सकते हो, किसी भी तरीके से प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हो, लेकिन उसका मूल आधार जो है वो दासत्व ही होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हम तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न करें, वो चाहे किसी भी भाव से करते। भगवान हमारे भाव को देखते हैं, भगवान हर भाव से हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, जो जिस भाव से मेरी सेवा करेगा मैं भी उसी भाव से उसको दर्शन दूंगा। तो फिर यहाँ पर शिवप्पा जी कह रहे हैं कि तीन बातों को छोड़कर बाकी सब वेदों में जो भी है मन गढ़ंत है। और क्या है, पहला ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये तीन चीजें ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध, उसके साथ संबंधों का आदान प्रदान, यानी कि संबंध को जानना और फिर उस संबंध के साथ आदान प्रदान करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम के रिश्ते को और भी बढ़ाना तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, और फिर उस प्रेम को अपने हृदय में कैसे डिवेलप करें, कैसे उसको प्राप्त करें अपने भगवान। पहले संबंध को जानो और उस संबंध को निर्माण करो और उसके बाद उस संबंध को और भी ज्यादा प्रबल बनाएं कि कैसे हम भगवान के साथ अपने इस शाश्वत संबंध को सदैव अपने हृदय में बढ़ाते रहें कृष्ण प्रेम को। भगवान ने आगे भी कहा, श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने को भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति के को उनसे श्री भगवान विलग करें। अच्छा, यहाँ पर बताया गया कि शंकराचार्य ने जो ये वेदों की व्याख्या की है ना, काल्पनिक है, लेकिन उनको ऐसा करना ही था क्योंकि भगवान का आदेश था। भगवान ने उनको क्या आदेश दिया था कि वो मनुष्य जाति को क्या करें, शिव जी को बोला था कि आप जाओ और सारे मानव जाति को भगवान से विमुख कर दो। अब ये शिव जी को ये काम सौंपा था, हैरत की बात है ना, भगवान ने स्वयं शिव जी को जाके कहा, और ये कठिन कार्य था बहुत, हर कोई नहीं कर सकता। शिव जी भगवान के वैष्णव भक्त हैं और शंकराचार्य के रूप में इस संसार में अवतरित हुए थे। भगवान ने जब उन्हें कहा कि संसार को भगवान से विमुख कर दो, जाओ ये कार्य करो, तो शिव जी ने बोला ना बाबा मैं ये नहीं करता हूँ, इससे तो बहुत अपराध लगेगा। तो शिव जी को भगवान ने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एक दफा सारे लोग, क्योंकि सारे लोग उस टाइम पर क्या होता, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा हो गया था और लोग जो है वो वेदों को खंडन करके अपनी मनमानी पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान को कर रहे थे। तो फिर अब शंकराचार्य ने क्या किया, आके वेदों का निर्माण किया, फिर से वेद जो है और यज्ञ ये सब बता दिया आके बताना। तो भगवान ने शंकराचार्य को, शिव जी को शंकराचार्य के रूप में इसलिए बताया कि वेदों के हिसाब से जब लोग चलेंगे, अब उसमें तो वेदों में बहुत सारी चीजें अनर्थी हैं, वो जो हमें व्यर्थ चीजें निकाली हैं, वो निकालने के लिए पहले तो एक दफा वेद पर आ जाए लोग, फिर उसमें क्या हमें अपने जीवन में उतारना है और क्या नहीं उतारना, उसके लिए फिर चैतन्य महाप्रभु आके सबको बताएंगे। इस तरह से भगवान की ये प्लानिंग थी, जिसकी प्लानिंग की वजह से शिव जी को शंकराचार्य के रूप में संसार में भेजा था। आगे बताया गया कि भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छिन्न करना था कि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों। शिव जी ने देवी से कहा, कलयुग में मैं मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा जो ब्राह्मण के वेश में प्रच्छिन्न बौद्धवाद ही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने मौन रहकर उनका स्वागत किया। तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि भगवत भक्ति मानव का सर्वोच्च ध्येय है। तब उन्होंने भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्त आत्मा भी भगवान हरि की भक्ति करते ही हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकर्षित कर लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य को बताया कि आप ये सब बातें सुनकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो, वास्तव में शास्त्र जितने भी हैं और उनका मेन मकसद क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवत भक्ति ही मानव का सर्वोच्च ध्येय है। हमारे संसार में आने का, मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है कि हम भगवान की भक्ति करें तो जो दिव्य पद पर पहुंचे हुए आत्मा साक्षात रहने वाले मुक्त आत्मा है वो भी भगवान की भक्ति करते, क्योंकि भगवान में इतने सारे गुण हैं कि जो मुक्त आत्मा है उनके हृदय को भी आकर्षित कर लेते और भगवान की भक्ति के बगैर वो नहीं रह सकते। यानी कि जिसका हृदय पवित्र हो जाएगा, जो जितना जितना ऊपर जाता जाएगा ना आध्यात्मिक में आत्म साक्षात्कार में, तो उसका पता कैसे चलेगा, वो उतना ही ज्यादा भगवान से प्रेम उत्पन्न करेगा। और अगर आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हो, वेदांत सूत्र पढ़ो, लेकिन यदि भगवान के प्रति आपका आकर्षण नहीं हो रहा है तो फिर समझो तो सब व्यर्थ है। तब भट्टाचार्य ने भगवान के आत्माराम श्लोक भागवतम के आत्माराम श्लोक 1.7.10 की व्याख्या सुननी चाहिए। महाप्रभु ने पहले भट्टाचार्य से कहा, अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 10, जिसको आत्मा राम श्लोक कहा है और उसकी व्याख्या श्लोक कहते सूतवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंठो उपयुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्तिम इत्थंभूत गुणे हरि। उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु को बोला कि इसकी व्याख्या आप करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, पहले आप इसकी व्याख्या करो, उसके बाद में उसकी व्याख्या करूंगा। तब भट्टाचार्य ने पंडितावन ढंग से, यानी कि पांडित्यपूर्ण तरीके से तर्क शास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की, क्योंकि वे इस समय के तर्क शास्त्र के समस्त परम विख्यात विद्वान थे, क्योंकि वो वैसे भी तर्क शास्त्र के, यानी कि वो बहस करते ना श्लोक के ऊपर, वो सबसे बड़े विद्वान थे। तो 9 टाइप से अलग अलग तरीके से उस श्लोक की व्याख्या की। भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने इस श्लोक की पांडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और तब भट्टाचार्य के अनुरोध पर उन्होंने इस श्लोक की 64 प्रकार से व्याख्याएं की और उनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को 64 तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया, लेकिन जो उन्होंने बताया थे ना जो पहले 9 व्याख्या, उसको तो छुआ भी नहीं। बोला ये सब तो कचरा है, इसको नहीं टच करना। तो इस प्रकार महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनकर भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मर्त्य प्राणी के लिए ऐसे विद्वत्तापूर्ण व्याख्या कर पाना असंभव नहीं। मर्त्य प्राणी का क्या मतलब होता है? चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या इतनी बड़ी है कि इससे एक छोटी पुस्तिका बन सकती है। अतः हमने चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत के एक अध्याय में इसकी पूर्ण व्याख्या की। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो है ना इतनी, अब ये डिस्कशन इतनी हेवी है कि इस श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने की, तो अगर यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल शॉर्टकट में श्री प्रभुपाद ने बताया, तो बोला वो जो है वो हमने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अमृत के एक अध्याय में वो पूरा डिस्कशन रखा, लेकिन जब वो सुना भट्टाचार्य ने तो उन्होंने सोचा किसी मर्त्य प्राणी यानी कि किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो इस श्लोक को इतनी विद्वत्ता से व्याख्या कर सके। इसके पूर्व श्री गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्माराम श्लोक की व्याख्याओं से भट्टाचार्य ढंग रह गए। वे सोचने लगे कि उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में ना पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया है। तब उन्होंने अपने पूर्व कृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए उनकी आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु ने दया करके भट्टाचार्य को स्वीकार कर दिया। अपनी अहितु की कृपा से महाप्रभु पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, फिर हाथ में वंशी लिए द्विभुज कृष्ण रूप में प्रकट हुए। महाप्रभु की जय हो। पहले तो गोपीनाथ आचार्य बताते थे ना उनको कि भगवान का अवतार, लेकिन भट्टाचार्य मानते नहीं थे, लेकिन अब जब चैतन्य महाप्रभु से वेदांत सूत्र की और स्पेशली आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं सुनी, तो फिर उन्होंने बहुत पश्चाताप किया कि वाकई में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण कर ली और चैतन्य महाप्रभु भी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपनी अहितु की कृपा से महाप्रभु ने अपना चतुर्भुजी नारायण स्वरूप और फिर कृष्ण स्वरूप में उनको दर्शन दिए। भट्टाचार्य तुरंत ही भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनकी कृपा से उनकी प्रशंसा में कोई उपरयुक्त श्लोक कई सारे श्लोक बनाए। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोकों की रचना की। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया और दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की सुध-बुध खो बैठे। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया तो महाप्रभु को केवल देखने से जो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता, तो सोचिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया होगा तो उन पर क्या कैसा दिव्य आनंद उन पर छा रहा होगा। अश्रु कंप, हृदय कंपन, श्वेत रोमांच, नृत्य गायन, क्रंदन तथा समाधि के 8 लक्षण भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हो गए। गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवत कृपा से अपने साले को इस तरह विचित्र ढंग से बदलते हुए देखकर विस्मित हो गए। वो चाहते थे सदैव भगवान कि वो भगवान के शरण में आए। अचानक से जब चैतन्य महाप्रभु की इसके ऊपर इतनी दिव्य कृपा हुई तो गोपीनाथ आचार्य को बहुत अच्छा लगा। भगवान की प्रशंसा में भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हीं में भगवान के उपदेश का सार भी है। अब यहाँ पर हम दो, उन्होंने वैसे तो 100 श्लोक भगवान की प्रशंसा में बनाए, लेकिन 2 श्लोक यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कि सार है, यानी कि भगवान के उपदेशों का सार भी इसी में है, तो हम वो पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, अत्यंत ही सुंदर श्लोक है और उसमें उन्होंने भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये श्लोक उद्धृत किया कि मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। यानी कि अब उनको, क्योंकि उन्होंने सारे वेदांत को पढ़ा था और जब वेदांत के इस आंतरिंग उद्देश्य को जब उन्होंने महाप्रभु के विषय में सुना तो फिर महाप्रभु को भगवान स्वीकार कर लिया और उन्हें ये पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु ही है, जो भगवान ही है, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वे करुणा के सागर हैं और अब वे भौतिक विरक्ति ज्ञान तथा भक्ति सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं, क्योंकि भगवान जो है पहले उपदेश करके गए थे, अब प्रैक्टिकल सिखाने के लिए महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जगह प्राप्त करूं। आगे सेकंड श्लोक में है, चूंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है। अब क्योंकि ऐसा हुआ था, क्योंकि शंकराचार्य जी के आने के बाद तो भगवान की शुद्ध भक्ति खत्म हो गई थी, वेदों का प्रचार हो रहा था, बस रूखा ज्ञान हो रहा था, कोई भक्ति प्रेम नहीं था। तो ये इतनी वजह यहाँ पर बता रहे हैं, चूंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो गई थी, अतः मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। अब सॉरी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो भक्ति विलीन हो गई है उसके सिद्धांत को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। उसी भक्ति को, जो कृष्ण प्रेम जो संसार से विलीन हो गया है, उसको वापस से उज्ज्वलित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए अवतार हुआ है। मैं उनके चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम कर रहा हूँ। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे विष्णु या भगवान के समतुल्य बताया। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा, और यही है भगवान की सेवा की प्राप्ति। अब भवबंधन से छुटकारा, ये देखो कितना सुंदर मुक्ति का शब्द चैतन्य महाप्रभु ने बताया। लोग क्या सोचते थे, मुक्ति का मतलब है, पहले जब शंकराचार्य सब फलसफा आ गया था ना, मायावादी सफा, तो वो समझते थे मुक्ति का मतलब होता है तदात्मा, कि मैं सारे झंझटों से मुक्त हो जाऊं, कोई भी मुझे कार्य करना नहीं पड़े, बस मैं भगवान के दिव्य ज्योति में सम्मिलित हो जाऊं और वहां पर आनंद करूं। यानी कि वो मुक्ति को भी एक तरह से तृप्ति, अपनी तृप्ति के लिए कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, मुक्ति शब्द की व्याख्या क्या कही, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि वास्तव में आप कौन हो, भगवान के दास हो। तो यहाँ संसार के जितने भी, क्योंकि दासत्व जो है आपके आत्मा का लक्षण है, आत्मा जो है वो दासत्व, जिस शरीर में जाएगी तो दासत्व करेगी। अब दासत्व बंधन का कारण बनता है, संसार की किसी भी चीज से यदि हम आकर्षण निर्माण करेंगे, आसक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो बंधन। अब यहाँ पर क्या बताया कि विष्णु या भगवान समतुल्य है, ये क्या है, मुक्ति का शब्द क्या है, मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भावबंधन से छुटकारा। और अगर हम संसार की किसी चीज में आसक्ति रखेंगे, उनकी सेवा में यदि हम अपना कर्तव्य समझेंगे कि भाई यही मेरे जीवन का कर्तव्य है, तो फिर हमारे बंधन का कार्य बनेगा। लेकिन मुक्ति का मतलब क्या है, भावबंधन से छुटकारा, तो यही है भगवान की सेवा की प्राप्ति। फिर जब हम भगवान की सेवा समझ कर, यानी कि कार्य नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस चेंज करनी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा, क्योंकि हम दास भगवान के हैं। अब जो जो कार्य भगवान ने सौंपा है वो सब मुझे कार्य करना है। तो ये कृष्ण भावना अमृत है, जिसका स्टार्ट जो है वो चैतन्य महाप्रभु की इन आदेशों के जरिए हुआ। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए। यानी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जब आए थे चैतन्य महाप्रभु, अब जगन्नाथपुरी में आए थे ना, जब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए थे, फिर कुछ टाइम तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ इस तरह उन्होंने जो वार्ता की, वाद विलाप चलता रहा, उसके बाद वो दक्षिण की यात्रा के लिए चले गए। और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए, उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने अन्यों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म के सम्मिलित कर लिया था। जो जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनाए गए, तो ये परंपरा चलती रही, फिर वो वापस दूसरे को भक्त बनाते रहे, वो भक्त बना, इस तरह भक्ति प्रचार हो रहा। इस तरह वे गोदावरी के तट पर पहुंचे, और चलते चलते एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुंचे, जहाँ उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के नगरवासी श्रीला रामानंद राय से हुई। बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो आपस में डिस्कस हुई थी, इतनी सुंदर है, उसके विषय में अब श्रील प्रभुपाद जी स्टार्ट करें कि रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और उनके संवाद की एक पुस्तिका के रूप में भी उपलब्ध है। अब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है वो एक छोटी सी बुक में भी, मतलब पहले से बता दिया गया है, अलग से उनकी बुक है, लेकिन इतना अद्भुत है, इतना उच्चतर ज्ञान है। तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, तो भी हम यहाँ पर इस संवाद का सारांश दे रहे हैं कुछ यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, और रामानंद की जो वार्ता है उनके विषय में श्रील प्रभुपाद जी संक्षिप्त में बताएंगे, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आप सब साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो।